अरुणिमा उस वक्त मिरर के सामने अपने बाल बना रही थी और आस्तिक उसके थोड़ा ही पीछे था जो अपने गले में टाई को बांध रहा था। अरुणिमा उसे रिफ्लेक्शन से घूर कर देखती है तो आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक ने एक अंदाज में अरुणिमा के उसके परिवार पर सवाल उठाने को इग्नोर कर दिया था। उसने अरुणिमा को कुछ नहीं बताया, ना तो उसने अपने पिता से हुई आखिरी बात के बारे में बताया और ना ही उसका उसके परिवार के साथ इस समय क्या संबंध है, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने साफ तौर पर अरुणिमा को उस बात से दूसरे डायरेक्शन में कर दिया और ये कहा कि अगर उसने एक बार फिर से आस्तिक से ये सवाल किया तो वो अरुणिमा को फिर से परेशान करेगा और इस बार तो रात से भी ज्यादा। अरुणिमा की आंखें एकदम डर से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत बेड से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। उसे जाता देख आस्तिक मुस्कुरा उठता है। दोनों तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और एक सर्वेंट उनका ब्रेकफास्ट लगा रहा था। हालांकि वहां पर कुछ सर्वेंट पुराने थे जो आस्तिक को जानते थे, लेकिन नए सर्वेंट आस्तिक को बिल्कुल नहीं जानते थे, पर उनका काम सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व करना था, मालिक की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर बाहर आता है और उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं? लेकिन अरुणिमा तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही हूं। दरअसल मैं मिस्टर जॉयल से मिलने जा रही हूं। कल मेरी वजह से मीटिंग नहीं हुई तो उसके लिए मैं उन्हें पर्सनली मिलकर सॉरी कहना चाहती हूं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? आस्तिक कुछ कहने वाला था पर तभी वो रुक जाता है और फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आज रात को हमारी डेट की तैयारी करने जा रहा हूँ। अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को देखकर हैरानी से उसने कहा, डेट मतलब? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? कल रात मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी पहली डेट शानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करने जा रहा हूँ। अरुणिमा ने मुंह बनाते हुए उसे कहा, आस्तिक मजाक बंद करो, डेट करने के लिए हम क्या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ना ही बच्चे हैं, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आस्तिक फुल मस्ती के मूड में था। उसने तुरंत अरुणिमा की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब करते हुए कहा, जरूरत तो मुझे इस वक्त कुछ और करने की है, लेकिन मैं बेचारा अबला पुरुष क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड मेरी जरूरतें समझती ही नहीं है और कल रात जब मैंने तुमसे वो कहा था कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो मैं सीरियस था। तुमने मेरी बात को मजाक लिया है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज रात तैयार रहना अपनी डेट के लिए, मैं ठीक 8 बजे तुम्हें पिक करने आऊंगा। उसके बाद आस्तिक धीरे से अपना चेहरा अरुणिमा के चेहरे के पास लाता है और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सरगोशी के साथ कहता है, और जब हमारी डेट खत्म हो जाएगी तो होटल रूम में हनीमून स्वीट बुक होगा, लेकिन इस बार बिना प्रोटेक्शन के होगा। अरुणिमा का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। उसने शर्माते हुए आस्तिक को अपने से दूर धकेला और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है, आस्तिक यू सच ए डिस्कस्टिंग, कितने बेशर्म हो गए हो तुम। लेकिन आस्तिक वहीं पर खड़ा खड़ा हंस रहा था और उसने हंसते हुए कहा, अरे अगर शर्माऊंगा तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगी ना, शर्माने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मुझे बेशर्मी रहने दो। अरुणिमा ने सनग्लासेस पहने और गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने आस्तिक से कहा, शट अप आस्तिक। लेकिन आस्तिक वहीं खड़े खड़े अरुणिमा से और ज्यादा मजे लेते हुए कहता है, रात को बताऊंगा शट अप का असली मतलब क्या है, तैयार रहना 8 बजे लेने आ जाऊंगा। अरुणिमा अपनी गाड़ी में बैठकर खुद ही ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। उसके जाने के साथ ही आस्तिक के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम से चेंज हो जाता है और फिर से वो पहले वाले एक्सप्रेशन में आ जाता है। उसने अब तेजी से अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने शुरू किए और अपनी जेब से फोन निकालकर वो एक नंबर डायल करता है। सामने से किसी ने फोन रिसीव किया तो आस्तिक ने सर्द और गुस्से भरी आवाज से कहा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तब तक उसे मरने मत देना, ये काम मैं अपने हाथों से ही करूंगा। आधे घंटे बाद आस्तिक की कार एक अस्पताल के सामने रुकती है और वो सीधे लिफ्ट से होता हुआ इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उसने बोर्ड के सामने कदम रखा, दरवाजे पर खड़े हुए गार्डों ने उसे सल्यूट किया और तुरंत दरवाजा खोल दिया। आस्तिक अंदर दाखिल होता है। उसके आदमियों ने पहले से ही डॉक्टर और नर्स किसी को भी अंदर आने से रोक दिया था। आस्तिक अकेला उस 5-स्टार होटल के कमरे जैसे हॉस्पिटल वार्ड में दाखिल होता है और जब उसने सामने के पेशेंट को देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ऊपर लगे मॉनिटर पर हार्टबीट दिखाई जा रही थी और ऑक्सीजन मास्क पेशेंट के चेहरे पर लगा हुआ था। आईवी ड्रिप उसके हाथ की नसों में लगाया गया था। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर ढका हुआ था और जख्मों से भरा हुआ उसका चेहरा इस समय किसी घिनौने राक्षस की तरह लग रहा था। आस्तिक शेर की तरह दबे पांव चलता हुआ उसके पास आता है और उसके कानों के पास झुकते हुए कहता है, सुनकर खुशी हुई, तुम अभी तक जिंदा हो सूर्य मल्होत्रा, मुझे पता है तुम्हें होश आ चुका है, आंखें खोलकर अपनी मौत को अपने सामने देखो। सूर्य ने अपनी आंखें खोली और जब उसने आस्तिक को देखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वो एकदम घबराते हुए आस्तिक को देखने लगता है। आस्तिक ने उसकी मार मार कर ऐसी हालत कर दी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हाथ पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और बेजान हो गए थे और सर पर भी गहरा जख्म था। इसके बावजूद भी वो बच गया और वो बचा सिर्फ आस्तिक की वजह से है, क्योंकि आस्तिक उसे अभी मरने नहीं दे सकता है। कल रात जब उसने अरुणिमा को उस हालत में देखा था तो आस्तिक का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस इंसान की जान ले ले, पर उसने अपने आप पर काबू किया और सूर्य को अपने आदमियों के हवाले करके उसे अस्पताल में एडमिट करवाया और उसने लगभग धमकाते हुए कहा कि इसकी जान बचानी चाहिए, अगर कुछ हो जाता है तो आस्तिक पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। कल रात ही सूर्य का इलाज शुरू हो गया था और अब वो होश में भी आ गया है। हालांकि उसकी हालत अभी भी अधमरे इंसान की तरह है, क्योंकि आस्तिक उसे मरने नहीं देगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता है। सूर्य की आंखें खुलती हैं और वो आस्तिक को अपनी डर से चौड़ी हुई निगाहों से देखता है। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने डेविल स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूर्य के मुंह से ऑक्सीजन मास्क खींचकर उसके गर्दन पर फेंक दिया। सूर्य को अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो जोरों से सांस लेने लगता है। उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी और वो तेजी से सांस लेने लगता है। उसके सांस लेते हुए खांसी आने लगी थी और खांसते खांसते उसके मुंह से खून आने लगा था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसे ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही थी और वो बिना ऑक्सीजन के इस समय तड़प रहा था। उसने दहशत भरी निगाहों से आस्तिक को देखा तो आस्तिक उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, कल रात मेरी अरुणिमा ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था ना।